नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमरीकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आरियना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवु ओजुकवु और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही।
For BRICS particularly, higher economic activity,
विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
है।
डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
This year is a milestone.
ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपाल पुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
ये आकाशवाणी है। अमरीकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाखस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।